नियम सार कारण कार्य नियम पुस्तक दूसरी लेक्चर नंबर 75। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सौवसाहूणं नमिऊनजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामि नियमसारं केवली सुद केवली भणिदं। आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह नियम सार नामक ग्रंथ है, उस पर पद्म प्रभ मलधारी देव जी ने जो टीका लिखी है तात्पर्य वृत्ति, और गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के इस पर जो प्रवचन हुए है, ये कारण कार्य नियम दूसरी पुस्तक के हम पृष्ठ संख्या 18 पर आ गए, 18। नीचे से दूसरा पैराग्राफ अभी हम पढ़ेंगे। यहाँ गाथा जो 38 नंबर की गाथा चल रही है कि जीवादि बहिर्तत्व जो है वो हेय है, और उसका टीका में कहा वो उपादेय नहीं है। ये जीवादि तत्वों में सारे पर्याय रूप तत्व लेना है, परद्रव्य की यहाँ बात ही नहीं की है। अजीव तत्व में भी अजीव संबंधी ज्ञान उसको लिया था, है ना। इन सबको परद्रव्य कहा, पर्याय कहकर परद्रव्य कहा, क्योंकि उसके आश्रय से पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, और हाँ त्रिकाली ध्रुव स्वभाव ही उपादेय है। पढ़ते अभी यहाँ पर, बापू भगवान आहा एक समय नु केवल ज्ञान, अरे एक समय ना अनंत चतुष्टय, केवल ज्ञान केवल दर्शन अनंत आनंद अनंत वीर्य अनंत सत्ता, तेने अनंत चतुष्टय कहवामां आवे छे। सत्ता तो है ही, परंतु जब हम अनंत चतुष्टय कहते हैं, मालूम है अनंत चतुष्टय, देखो चतुष्टय यानी चार बातें, अनंत यानी वो जो ज्ञान गुण है उसमें कितनी शक्ति है वो परिपूर्ण प्रकट हुई, कितनी तो अनंत है, यानी अनंत ज्ञान कहने से केवल ज्ञान, अनंत दर्शन कहने से केवल दर्शन, अनंत वीर्य शायिक वीर्य जिसको कहेंगे, और अनंत सुख जो श्रद्धा गुण और चारित्र गुण परिपूर्ण क्षायिक जो हो गए तो उसके कारण वो अनंत सुख उत्पन्न होता है। तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख और अनंत वीर्य जो अरिहंत, वो श्रद्धा नहीं, दर्शन शब्द दो में आता है, श्रद्धा के लिए भी सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन आता है तो श्रद्धा समझना, और जब ज्ञान दर्शन वाला दर्शन है ना, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग सुना है ना, यानी जानना देखना जिसको कहेंगे, उस अर्थ में दर्शन शब्द आता है। तो ये जो जब केवल ज्ञान होता है तो ये चारों ही प्रकट हो गए हैं, तो ये अनंत चतुष्टय कहेंगे उसको।
देखो बात ऐसी होती है कि जब स्वभाव की बात आती है और उसमें ज्ञान दर्शन कहेंगे तो ये दर्शन नाम का जो गुण है उसकी बात है, और जहाँ ये मिथ्यात्व भी है या सम्यक भी है, ऐसे सम्यक या मिथ्यात्व की बात करनी है तो वहाँ सम्यक दर्शन या मिथ्या दर्शन वो श्रद्धा गुण की परी है, इन्हें नाम एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग है।
पहले पुस्तक में तो वो दोनों के अर्थ में लिया था ना, दर्शन शब्द से श्रद्धा और ये दर्शन उपयोग दोनों ही लिए थे पहले पुस्तक में। श्रद्धा और चारित्र मिलकर सुख ले लिया, अनंत शांति है ना वहाँ पर, इसलिए सुख लिया वहाँ पर, वहाँ क्षायिक समय दर्शन कहते हैं। या अनंत दर्शन, देखो केवल ज्ञान केवल दर्शन, अनंत आनंद कहो या सुख कहो एक ही बात है, और अनंत वीर्य ये चार है मुख्य, और अनंत सत्ता है ना, उसका जो सत्ता तो है ही है, पण साथे अनंत गुण ने पूर्ण पर्याय छे। केवल इतना ही नहीं है, सभी गुणों की परिपूर्ण, जिसको कहेंगे पूर्ण विकसित पर्याय उत्पन्न हो गई। सिद्धों में तो सभी गुण, अरिहंतों में तो अभी चार बाकी है, जो अघाती कर्म बाकी है उसके निमित्त से जो वहाँ के गुणों की अभी परिपूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट नहीं हुई है, बाकी तो सभी हो गई है। जेटला गुण छे एटली पूर्ण पर्याय बधी पूर्ण छे, अने जारे श्रद्धा आत्मा में ढळे छे तो मात्र श्रद्धा ज ढळे छे एम नहीं। क्या कहना चाहते? सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक हुआ ना, तो ये सम्यक केवल श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, क्या हुआ? ज्ञान गुण भी सम्यक हुआ, चारित्र गुण भी सम्यक हुआ। अभी चारित्र में अभी विभाव भी है, क्योंकि अभी अनंतानुबंधी गया है तो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वगैरह है, परंतु वहाँ वितरागता शुरू हो गई है तो सम्यक वहाँ शुरू हो गया अंश। तो केवल तीन ही गुणों का नहीं, जितने अनंत गुण है उनमें सब में सम्यक परिणमन चालू हो गया। उन्हें जितने विभाव रूप परिणमते थे उसमें कुछ अंश तो सम्यक रूप हो ही गया। यहां लिखा ना जेटला गुण छे, अभी यहां तो पूर्ण पूर्ण विकसित की बात है, सिद्धों की बात है, तो जितने गुण है वो परिपूर्ण विकसित हो गए हैं। यहां ना जारे श्रद्धा आत्मा मां ढळे छे, यानी जब सम्य दर्शन हुआ तो मात्र श्रद्धा ढळे छे एम नहीं, ए तो श्रद्धा थी कथन कर्यु छे, बाकी जेटली पर्याय छे बधी अंदर ढळे छे। वैसे तो ज्ञान और श्रद्धा की बात वहां लेते हैं, परंतु जो प्रत्येक गुण का कार्य है वो स्वभाव सन्मुख होकर जितना जो जिसमें उसकी शुद्धि की आंशिक शुद्धि प्रकट होनी है तो सब ढलते हैं, ऐसा कहने में आता है। क्योंकि द्रव्य की पर्याय तो सभी गुणों की मिलकर जो है, द्रव्य क्या है तो गुणों का समुदाय है, तो द्रव्य की एक पर्याय कहेंगे तो सभी गुणों की पर्याय उसमें आ गई है। तो एक श्रद्धा गुण ही ढला अंदर के, द्रव्य की पूरी पर्याय अंदर ढल गई है, तो सभी गुणों की पर्याय ढल गई, ऐसा कहेंगे हम वहां पर। पर कथन किसी एक की अपेक्षा से यहाँ करते हैं। ग्यारहवीं गाथा में तो भाषा एम आवी के भूदत्तम अस्थिदो खलु सम्मादिठी हवदि जीवो, पण एकलू समकित थाय छे एटलू नहीं, ए बधी पर्याय जेटली छे ए बधी भूतार्थ ने आश्रय थई, क्योंकि द्रव्य नहीं भूतार्थ का आश्रय लिया कहो, हम कहने के लिए वो आश्रय करने वाली पर्याय है कहते हैं, पर वो तो द्रव्य का ही वो पार्ट एंड पार्सल, द्रव्य की अवस्था है, तो उसको अगर अभेद करके कहेंगे तो द्रव्य और पर्याय एक में है। अभी यहाँ हमको त्रिकाली को अलग बताना है इसलिए पर्याय का अलग निषेध करते हैं, परंतु वो है नहीं, वो ऐसी बात नहीं है, कार्य तो उसी में हो रहा है, परंतु वो अंदर ढलने वाली पर्याय अपने को किस रूप से अनुभव करे, मैं तो त्रिकाली हूं। क्या कहते देखो, एक कारण नीचे से तीसरी लाइन, त्या पर्याय में सम्य दर्शन ज्ञान ने चारित्र नो अंश पण साथे आयो। अरे अनंत गुणों नो एक अंश व्यक्त अनंता एक साथे आया, यानी सभी गुणों का एक जो व्यक्त अंश है वो सम्यक रूप से, और अनुभव तो उसी का होता है सभी में, जो कुछ वहाँ जिसको कहेंगे आनंद, जिसको सत्ता का आनंद, वीर्य का आनंद, इस तरह से वो दीपचंद जी ने बहुत समझा है ना, हाँ कासलीवाल ने, वो उनके जो भावदीपिका ने, वो तो आत्मावलोकन वगैरह अन्य अन्य जो पुस्तक है ना उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। समझानो का है, अनंत गुण जेटली संख्या में छे ए बधा गुणनी शक्ति अने स्वभावनु जे सामर्थ्य हतू ए पर्याय में व्यक्त रूपे एक अंशे बाहर आव्यो, कभी सम्य दर्शन होने पर, और जब वो सिद्ध होते तो सभी जितना परिपूर्ण, जिसको कहें ना कोई मर्यादा बिना लिमिटलेस उसका जो कुछ विकास हो जाता है, यानी उसका प्रत्येक गुण का सम्यक रूप से व्यक्त अंश यानी प्रकट हुआ, यानी पर्याय में आ गया, व्यक्त अंश कहना ही प्रकट होने को कहते हैं। जो प्रकट हुआ उसी को व्यक्त कहते हैं। अंश क्योंकि देखो परिपूर्ण नहीं हुआ है ना, चारित्र का अंश है कि पूरा चारित्र हुआ अंश है, ऐसे ज्ञान का सम्यक है परंतु परिपूर्ण नहीं, वो केवल ज्ञान होने पर होगा। सब में लेकिन योग गुण है, अभी आप कहेंगे कंपन तो चल रहा है, श्रद्धा गुण में भी उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें अंतर पड़ेगा। पर हम सम्यक या मिथ्या इतने दो ही बात करते हैं, यहाँ तो सम्यक हो गई है श्रद्धा, ये तो हमें उसमें मालूम नहीं है ना। अभी ये हम कहेंगे योग गुण है तो उसमें जिसको कहेंगे कि निष्क्रियता निष्कंप बना चालू हो गया, परंतु ऐसा निष्कंप नहीं देखने में आता है, वो तो सहयोगी अवस्था में भी कंपन है, परंतु मिथ्या तो संबंधी का कंपन नहीं होगा। इस तरह से अभी क्योंकि केवल ज्ञान गम्य बातें हैं, हर गुण में तो हम कह नहीं सकते ऐसा, जितने गुण हैं कर्ता कर्म करण और वो भी सब लगा लो, कोई भी ले लो, उसमें सम्यक अंश चालू हो गया है। कितने तो मिथ्या थे भी नहीं है, हम उसमें मिथ्या अंश ऐसा कह भी नहीं सकते, परंतु फिर भी यहाँ पर हाँ सम्यक परिणमन उसका सम्यक अंश व्यक्त हो गया। वो बराबर बराबर है, यही है, यही सर्व गुणांश सम अंश क्यों कहा, परिपूर्ण हो जाता तो सिद्ध अवस्था बताते, यहाँ अंशिक शुरुआत हो गई और अंशिक सम्यक हुआ, और केवल सम्यक हुआ इतना ही, वो प्रकट भी हुआ है तो व्यक्त हुआ, तभी तो अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ है। व्यक्त लिखा है, मैंने अभी पढ़ा नहीं आगे, हाँ आगे अब पढ़ेंगे। देखो के स्वभावनु जे सामर्थ्य हतु ए पर्याय में व्यक्त रूपे, देखो पर्याय में आना ही व्यक्त होना है, क्योंकि जो द्रव्य जो है त्रिकाली वो तो अव्यक्त कहने में आता है, प्रत्यक्ष प्रतिभास में साक्षात विद्यमान है परंतु अव्यक्त है। व्यक्त कब होता है, पर्याय उसके सन्मुख होकर उसको जानने लगती है तो वो प्रकट होने लगता है, व्यक्त अंश को यानी पर्याय उसी को तो पर्याय कहते हैं हम। तो केवल एक गुण का नहीं होता है व्यक्त, सभी गुणों का, क्योंकि द्रव्य अखंड है तो वो उसका अखंड रूप से पूरा व्यक्त भी होगा, सभी गुणों का अंश कोई व्यक्त हो जाएगा। तो कहते एक अंश बाहर आयु ए रहस्यपूर्ण चिट्ठी माँ छे भाई लालचंद जी, चिट्ठी माँ ज्ञानादि एक देश चौथे गुण स्थाने अने केवड़ी ने एक देश है पार्शल आंशिक अने केवड़ी ने ज्ञान आदि सर्वदेश, सर्वदेश ने पूरा जितना ज्ञान में सामर्थ्य है वो परिपूर्ण प्रकट हो गई। श्रीमद हाँ लिखा है श्रीमद एनो अर्थ एम करियो के सर्व गुणांश ते समकित, एकदम सिंपल भाषा में बिल्कुल यही अर्थ व्यक्त होता है, यानी सभी गुण आंशिक रूप से वहाँ सम्यक रूप से हो गए है और वो व्यक्त भी हो गए है, केवल होकर अंदर पड़े ऐसा नहीं है, प्रत्येक गुण का हाँ क्योंकि अनुभव क्या हुआ, अनुभव एक एक गुण का ऐसा नहीं होता है, अनुभव तो सभी अखंड जो है उसका आंशिक रूप सम्यक होने से क्या है अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव हुआ। समकित एटले शू, हाँ हाँ आत्मा मां जेटला गुण छे, क्या कहा कितने हैं अनंत, हमने देखा ना जीव अनंत, उससे अनंत गुना पुद्गल, उससे अनंत गुना तीन काल के समय, उससे अनंत गुना आकाश द्रव्य के प्रदेश, और उससे अनंत गुना प्रत्येक द्रव्य में गुण। तो जितने गुण है जितने अनंत है ए बधानी संख्या माथी व्यक्त अनंत गुणनो अंश प्रकट थाय छे, ये व्यक्त हुआ है पूरा, उसी को सम्यक दर्शन कहते हैं। मात्र संकित उत्पन्न थयू एम नहीं, हम कहते तो सम्यक दर्शन, केवल श्रद्धा गुण की अपेक्षा उसको नाम देते हैं, पर है तो सभी गुणों का परिणमन है, सम्यक रूप से अंश प्रकट हो गया है। मारे तो बीजू कहूं छे कि अनंत गुण नो अंश जे प्रकट थयो, अभी यहाँ क्या विषय है उसको परद्रव्य कहा, पर्याय है और उसके लक्ष्य से जो नया जो कार्य होने वाला है, शुद्धि की वृद्धि वगैरह होनी है या नई पर्याय होनी, उसके आश्रय से नहीं होगी, वो त्रिकाली के आश्रय से ही सम्यक तो हुआ है, और वो त्रिकाली के आश्रय से उसमें वृद्धि होने वाली है। तेते अनंत गुणों का अंश यानी सम्यक दर्शन जिसको हम कह रहे हैं, आत्मा की अनुभूति कह रहे हैं, वो क्या है? अंश है। मोक्ष मार्ग यहाँ से शुरू हुआ है। पहले कुछ भी उसने व्रतादि अंगीकार किए थे, सभी भक्ति कर रहा था, शास्त्र सुन रहा था, जिस समय स्वसन्मुख होकर अनुभव हुआ यानी क्या, सभी गुणों का अंश प्रकट हुआ पर्याय में जिसको व्यक्त कह रहे थे, तो तभी उसके धर्म की शुरुआत हो गई, तभी मोक्ष मार्ग शुरू हो गया। फिर भी यहाँ का विषय क्या है, उसको पर्याय कहने से बाह्य बहिर तत्व कहने में आता है। तेने परद्रव्य कहूं चाह, हाँ समझाणू का है, ए परद्रव्य हुआ थी खरेखर उपादेय थी। कुंदकुंद आचार्य ने तो उसको हे कह दिया और पद्म प्रभु मलधारी देव उसको कहते खरेखर उपादेय नहीं। अरे अनंत 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 नी कोई संख्या नहीं, अनंत 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 એમને એમ અનંત અનંત ચાલ્યા જાઓ તો પણ ગુણની સંખ્યામાં આ છેલ્લો અનંત છે એમ નથી। યાની એ અંતિમ ગુણ હી હમને 1 2 3 કાઉન્ટ કરના અભી હમારે તો હમ કાઉન્ટ કરેંગે તો હમારી ઇતની આવી ભી નહીં હે તો કેવલી ભી ઉસકો ગિનેંગે તો યે હા યે અંતિમ એસા નહીં કહેંગે વો ભી ઉસકો અનંત તરીકે સે જાન દે। છેલ્લો અંત તો નથી પણ એ છેલ્લો એક ભાગ એ તો એમાં છે જ નહીં। એટલો ભગવાન આનંદ આનંદ આદિ સ્વભાવથી ભર્યો પડ્યો છે, મોક્ષ માર્ગમાં એક અંશ વ્યક્ત થયો બધા ગુણનો, સર્વ ગુણાંશ તે સંકિત, તેને પરદ્રવ્ય કહ્યું। જ્ઞાનચંદજી આહા હા ક્યાં ગયા તમારા? જતીશજી, જતીશ બહાર બેઠા છે, ઠીક, જતીશ તો અહીંયા બહુ રહેતા હતા ને, આહા હા। શું કીધું? જીવાદી સાત તત્વોનો સમૂહ, સમૂહ કીધો ને, સમૂહ લીધો ને, કીધો ને, લીધો ને, એક પર્યાય નથી, સાત છે માટે સમૂહ થયો હૈ તો સભી પર્યાય, પરંતુ સભી કો ઇકઠ્ઠા બતાકર સમૂહ કહે દિયા, ક્યોંકિ હરેક પર્યાય કા સ્વરૂપ જુદા જુદા હૈ, કોઈ આશ્રવ વાલી હૈ, કોઈ બંધ વાલી હૈ, કોઈ સંવર નિજરા કી હૈ, મોક્ષ કી હૈ, તો ઉસકા સમૂહ કહે દિયા। છતાં એ સમૂહ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે ખરેખર ઉપાદેય નથી। હેતુ શું? ઉપાદેય કેમ નથી? એ પરદ્રવ્ય હોવાને લીધે। ગજબ વાત કરી છે। ઓર પરદ્રવ્ય નહીં, જો એ જીવ ઓર એ પુદ્ગલ એસા પરદ્રવ્ય નહીં, વહાં પરદ્રવ્ય ક્યું કહા? ઉસકા લક્ષ્ય છોડના હૈ ઓર આત્મા કા લક્ષ્ય કરના હૈ, ઇસલિયે પરદ્રવ્ય કહેકર ઉસકા લક્ષ્ય છોડાયા, પર્યાય હૈ ઇસલિયે। હવે આત્મા અને ઉપાદેય એ લેવાનું છે, એમાં લાંબી વાત છે। સહજ વૈરાગ્ય રૂપી મહેલના શિખરનો જે શિખામણી, હવે મુનિ પોતાની વાત કરે છે, પોતાની વાત કરીને શ્રોતાઓને તત્વ કેવું છે બતાવે છે। સ્થિતિ એવી છે, હવે એવા છીએ અમે, એવા છીએ કેવા? સહજ વૈરાગ્ય રૂપી મહેલના શિખરનો જે શિખામણી। શું કહ્યું? સહજ વૈરાગ્યોનો અર્થ શું? કે સ્ત્રી કુટુંબ છોડ્યા, દુકાન છોડી, ધંધા છોડ્યા, એ વૈરાગ્ય છે? એ વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા જ નથી। કલ ભી વાત આવી હતી ને, જ્ઞાન ઓર વૈરાગ્ય કી વાત સમજાઈ હતી ઉન્હોને, વૈરાગ્ય એને વો તો રાગ સે વિરક્ત હો જાના, વિરક્ત સે વૈરાગ શબ્દ આ ગયા। વૈરાગ્યની વ્યાખ્યા તો એ છે કે અસ્થિ, પોતાનો પૂર્ણ સ્વભાવ ભગવાન। અસ્થિ સે ક્યા હૈ? તો જો પૂર્ણ સ્વભાવ જો ભગવાન હૈ, જિસકો હમ શુદ્ધાત્મા ત્રિકાલી કહેતે હૈ, એની શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનની સાથે પુણ્ય પાપના વિકલ્પથી વિરક્તપણું, એ વૈરાગ્ય છે। અને ઉસકે પહેલે મેં પહેલે ક્યાં લઈ લીયા મુખ્ય, કે જો પૂર્ણ સ્વભાવ હૈ, સ્વભાવ ભાવ, ઉસકી શ્રદ્ધા ઓર જ્ઞાન યાની આત્માનુભૂતિ વાલા જીવ લિયા, और उसके जो पुण्य और पाप के विकल्प से जो विरक्तपना है वो वैराग्य है। नहीं तो हम आलसी होकर रात दिन सो के रहते हैं, ना हमें पुण्य में रुचि है, ना हमें पाप में रुचि, वो वाला नहीं चलेगा। हाँ वो वैराग्य उदासीन मुंह लटका के बैठ गया, वो वाली बात नहीं है। ભગવાન એમ કહે કે અમારી ભક્તિનું પરિણામ એનાથી વિરક્ત એ વૈરાગ્ય છે. એ નિર્જરા અધિકારમાં આવ્યું ને. દેખો મુનિરાજ કહે રહે કે હમ યે સહજ વૈરાગ્ય રૂપે મહેલ કે શિખાર વગેરે વગેરે હૈ, તો કે ઉનકો ભગવાન કી ભક્તિ નહીં હૈ? હૈ, પરંતુ વો અંદર સે ઉસ ભક્તિ કે પરિણામ મેં રહેતે હુએ ભી ઉસસે ઉદાસીન હૈ, કે ઉનકો યે લગતા હૈ યે તો કરને લાયક બાત નહીં, ઉસમે વો રચે પચે નહીં. જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય બે શક્તિ. જ્ઞાન અસ્તિત્વની સારા પૂર્ણની પ્રતીતિ એ જ્ઞાન, અને વૈરાગ્ય પુણ્ય પાપના વિકલ્પથી રહિત એને વિરક્ત. રક્ત અનાદિથી છે એનાથી વિરક્ત, એ અસ્થિનું જ્ઞાન અને રાગથી વિરક્ત. દેખો દો બાતે લી, જ્ઞાન ઓર વૈરાગ્ય સાથ સાથ હોતા હૈ. તો જ્ઞાન એની જો અસ્થિ રૂપ હૈ, જો ત્રિકાલી કાયમ રહેને વાલા સ્વભાવ ભાવ હૈ, ઉસકા જ્ઞાન, ઉસકી અસ્થિ કબ ઉસકા અનુભવ કરેંગે તો ઉસકી અસ્થિ માની. હમને કેવલ પઢકર ઉસકા રટ લિયા ઓર બિલકુલ હૈ એસા કહી દિયા, ક્યોંકિ ભગવાન ને કહા તો હોના હી ચાહિયે, વો વાલી નહીં. જ્ઞાન ઓર શ્રદ્ધાન કબ કહેંગે? અનુભવ પૂર્વક કહેંગે ઉસકો. ઇસલિયે અસ્થિનું જ્ઞાન પૂર્ણ પ્રતીતિ આયે ને યહાં પર. ઓર રાગથી વિરક્ત, રાગ તેને પુણ્ય પાપ કે વિકલ્પ સે વિરક્ત, એ વૈરાગ્ય. આવી વાત છે, હજારો રાણી છોડી દે, કરોડોની પેદાશ છોડી દે માટે વૈરાગી છે એમ નથી. દુનિયા તો ઉસી કો માનતા હૈ ને વૈરાગ્ય. વૈરાગ્ય તો એને કહીએ સહજ વૈરાગ્ય, સહજ પોતાની ચીજ. દેખો એ જો દ્રવ્ય હૈ તો સહજ હૈ, વો તો હૈ હી, સ્વાભાવિક હૈ વો. સહજ પોતાની ચીજ જે પૂર્ણાનંદનો નાથ છે, એની ઉપાદેય બુદ્ધિ થઈને, ઉપાદેય બુદ્ધિ એને વહી જાનને લાયક હૈ, ઉસી કા લક્ષ કરને લાયક હૈ, એસે માન લિયા ઉસને. દેખો હે ઓર ઉપાદેય માન્યતા મેં હોતા હૈ, મેને પહેલે ભી કહા થા, ઉસકો પ્રવૃત્તિ મેં મત સોચો, ક્યોંકિ પ્રવૃત્તિ મેં અભી પુણ્ય કે પરિણામ ભી હૈ, ક્યોંકિ મુનિરાજ હૈ ઓર યે સમજાને કે ઉનકો વિકલ્પ આ રહે હૈ. પદ્મપ્રભુ મલધારી દેવ જો ટીકા લિખ રહે હૈ, વો ભી શાસ્ત્ર કી ટીકા લિખને કા શુભભાવ હૈ, પરંતુ ઉસસે વો વિરક્ત હૈ, યાને વો અટપટી લગતી હૈ સુનને વાલોં કો, જિસકો અભ્યાસ નહીં હૈ, ઉનકો એસે લગતા કર ભી રહે ઓર વિરક્ત ભી કહે રહે. ખ્યાલ મેં આઈ બાત? તો એની ઉપાદેય બુદ્ધિ થઈને જે નિર્મળ પ્રતીતિ, સમ્યક દર્શન, પૂર્ણના અનુભવમાં પ્રતીતિ થઈ. દેખો પૂર્ણ કા અનુભવ, એને ત્રિકાલી કા અનુભવ, ક્યોંકિ પૂર્ણ કે લક્ષ્ય સે જો અનુભવ હુઆ, ઉસકો પૂર્ણ કા અનુભવ યા ત્રિકાલી કા અનુભવ યા સ્વભાવ કા અનુભવ કહેંગે. પરંતુ વો સ્વભાવ કુછ પર્યાય મેં ઘુસ નહીં જાતા હૈ, ખ્યાલ મેં? વો તો કાયમ ત્રિકાલી તો ત્રિકાલી રહેતા હૈ, ઉસકો કહેતે ને વો પર્યાય મેં નહીં આ ગયા, પરંતુ જાના ગયા, ઉસકે સન્મુખ હોકર જાના તો ઉસકા અનુભવ હુઆ એસા કથન પદ્ધતિ હૈ. એટલે પૂર્ણના અનુભવમાં પ્રતીતિ થઈ. એ પ્રતીતિ અનુભવ વિના નહીં હોતી હૈ. જાને બિના કૈસે શ્રદ્ધા હોગા કે યહી મેં હું? અતિન્દ્રિય આનંદ કા વેદન હુઆ ઉસી સમય ઉસકી પ્રતીતિ કી ભી પર્યાય ઉસમે આહી ગઈ. એસા ભી નહીં, પહેલે અનુભવ હોને કે બાદ ફિર ઉસીને પ્રતીતિ કે, એસા નહીં. વહી સમય હૈ, ક્યોંકિ જ્ઞાન ભી સ્વભાવરૂપ પરિણમા હૈ, દર્શન ભી સ્વભાવરૂપ, અભી એ શ્રદ્ધા ચારિત્ર સભી સ્વભાવરૂપ પરિણમિત હો ગયે, તભી ઉસકે વો પ્રતીતિ સચ્ચી પ્રતીતિ કહેંગે. અને લોકો કહેતે ને હમને તો અભી જાના હૈ, અભી હમકો શ્રદ્ધા નહીં, શ્રદ્ધા નહીં, પણ શ્રદ્ધા કબ હોગી? સ્વસન્મુખ હુએ બિના તો પ્રતીતિ એને અનુભવ નહીં હોને વાલા, ઉસકે બિના શ્રદ્ધા એસી હો જાય એસા કભી કોઈ રાસ્તા હી નહીં ઉસકે લિયે. તો યે બારંબાર જો સ્વભાવ કી મહિમા બતા રહે હૈ, તો ઇસકો હમ શાસ્ત્ર સે સુનેંગે, ઉસકી એને ઉસકી માલુમાત હો જાયેગી, પરંતુ લક્ષ્ય તો હમે અપના કરના હૈ, કોઈ દૂસરા કરકે દેને વાલા તો હૈ નહીં. તો નિર્મળ પ્રતીતિ, સમય દર્શન, પૂર્ણના અનુભવમાં પ્રતીતિ થઈ, એની સાથે શુભ અશુભ રાગથી હટીને વૈરાગ્ય અને રક્તપણું હતું, અભી તક ક્યાં થા ઉસમે રચા પચા થા, એને છોડીને વિરક્ત થવું એ અસ્થિથી જ્ઞાન, નાસ્તિથી વૈરાગ્ય. ક્યાં કહા? अस्तित्व यानी उसमें अनुभव हो गए, अस्थि हो गया, अस्थि के अस्थि से उसको ज्ञान कहा और नास्ति से उसको वैराग्य कहा। पुण्य पाप के विकल्प से हट गया है, पर हट गया तो कहाँ गया है, अपने स्वभाव के सन्मुख में उसकी प्रतीति चल रही है, इसलिए वो अस्थि है और इससे हट गया ये नास्ति है। इसलिए कहते ज्ञान और वैराग्य साथ साथ चलता है। जीनी वाचे भाई, वीतराग नो धर्म घणो सूक्ष्म छे बरबू, भगवान नो विरह पड़ो, प्रभु त्या रही गया, क्योंकि ये तो अभी तो यहाँ कोई तीर्थंकर है ही नहीं है, तो इसे भगवान का विरह हो गया। भगवान ने आ वाणी छे पण प्रभु त्या रही गया, आहा मार्ग रही गयो बीजो, अमे तो त्या हता ने, अमने तो विरह थई गयो। देखो स्वामी जी पहले सिमंदर भगवान के वहाँ महाविदेह में थे, उनके ज्ञान में ऐसे आता था, और फिर पूर्व भोग की बात है। और वहाँ वो स्वयं बोलते कि राजा के पुत्र थे, अब जो कि पैदाश थी, अभी हम वो एक डीवीडी देख रहे, उसमें उन्होंने कहाँ वो उसमें नैरोबी गए थे, वहाँ के लेक्चर में बताया, हाँ बोला है बहुत बार, उसमें तो स्पष्ट सब बोला है उन्होंने, बहुत बात बताई, यानी वहाँ थे, कुछ अपराध हुआ ऐसा कहते ना, मान्यता में कुछ गड़बड़ हो गई तो मनुष्य हो लिया यहाँ, यानी मिथ्या दृष्टि होकर यहाँ आ गए हैं अभी, परंतु पहले की सुनी हुई बातें हैं तो अंदर से वही सच है, ये पहले से लगता था कि जो वहाँ थे भी स्थानकवासी, तब भी वो कुछ बातें उनको वो तो जस्ती नहीं थी, और ये जो सिद्धांत है तब से कहते थे, तब तो उनका तो जैन शास्त्रों का यानी दिगंबर शास्त्रों का अभ्यास नहीं था, फिर भी केवल ज्ञान संबंधी, सर्वज्ञ संबंधी, श्रद्धा संबंधी बातें इतनी जो स्पष्ट उनका, तभी भी वो न्याय से सब बातें सिद्ध करते थे। और वहाँ उनके जो अन्य जो गुरु से भी, या जो कोई गुरु भाई जिसको कहेंगे, अन्य जो स्थानकवासी में, तो उनके साथ भी उनका बहुत बार वाद होता था, या अन्य लोगों को वो बातें, इनकी बातें जचती नहीं थी, उनकी बातें इनको बराबर नहीं पड़ती थी, तब भी बिल्कुल डंके की चोट यही बात सत्य ऐसा कहते थे। और बाद में तो उन्होंने साक्षात प्रूफ ही मिला समय सार में, जो बातें वो पहले से जो उनको लगती थी वही बातें वो साक्षात कुनकुन की लिखी हुई मिली, तो उन्होंने बताया ये अशरीर होने का यही मार्ग है, यहाँ लिखा ना इसलिए कि हमको विरह हो गया, क्योंकि वहाँ थे, वो वाणी सुनी थी, अब सुनी हुई बात है, तो यहाँ भी वो जिसको हम कहें संस्कार रूप से चलते, अब वहाँ निमित्त मिला सामने समयसार, तो वो बातें फिर, क्योंकि इसमें से इतना अर्थ निकाला कि समयसार तो ये दिगंबरों में पहले से था, तो अन्य लोगों को तब तक इतना थे, कोई बिल्कुल नहीं थे ऐसी बात नहीं है, समयसार के अभ्यास अभी भी है, जो कांजी स्वामी को जिन्होंने नहीं सुना उनका भी अभ्यास है, ऐसे कितने लोग हैं, परंतु इन्होंने जिस पद्धति से उसको एकदम सरल करके समझाया है, लाखों लोगों को उसका अनुभव यानी मार्ग समझ में आ गया है, इसलिए कहते हमको उनका विरह हो गया। बार बार कहते ना भगवान ने विरह पड़ो, प्रभु त्या रही गया, यानी विदेह मां भगवान ने आ वाणी छे पण प्रभु त्या रही गया, वो तो यहाँ तक बताते कि जब कुनकुंद आचार्य वहां थे, आए थे, तब हम वहां थे, यानी हम ऐसा भी लेते ना, कैसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि वहाँ आयु छुटकर यहाँ उन्हीं के ग्रंथ का इतना एक्सप्लेनेशन उनके द्वारा हो गया। हाँ आगे बेंश्री में तो उनका तो जाति स्मरण आता है उनके, बताइए ना। हाँ वो भी नगर सेठ के पुत्र थे, चार जनों के नाम आ गए उसमें। हाँ देखो 20 नंबर पेज नया पैराग्राफ है ना, ए प्रभु नी वाणी एम कहे छे, आहा हा भगवान तारा मा अनंता 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 आकाशना प्रदेश थी अनंत गुणा गुण भरिया छे। बहुत बार बताया उन्होंने, ए बधा गुणनो एक अंश व्यक्त प्रकट थाय तेने समय दर्शन ज्ञान चारित्र कहम आवे छे। ये पर्याय है ना, पूरी अखंड एक मिलकर एक पर्याय है, उसी को समय दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. તેને અહીંયા પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવ્યું છે. પરદ્રવ્ય કેમ કહ્યું એ મુખ્ય વાત છે કે જેમ પરદ્રવ્યમાંથી પોતાની શુદ્ધિની પર્યાય આવતી નથી, એમ પર્યાયના આશ્રયે શુદ્ધિની પર્યાય પ્રકટતી નથી. ભાષા તો સાદી છે પ્રભુ, માર્ગ તો એવો છે, એવો છે, હા હા રે રે. એ માર્ગને સમજાવીના 84 લાખ યોની એક એકમાં અનંત અવતાર કર્યા. ક્યા કહેતે હૈ એસા કોઈ નહીં ભાવ મિથ્યા દૃષ્ટિ કે યોગ્ય બાકી નહીં રહા કે જહાં ઇનોને અનંતો બાર જન્મ નહીં લિયા હોગા. ક્યુકિ હમ અનાદિ સે હૈ, અનાદિ અને અભી કિતને પીછે જાઓ 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 જાઓ, અનંત 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 કાલ બીત ગયા હૈ. તો મનુષ્ય કે ભાવ અનંત કી હૈ, તો અન્ય મેં તો કિતને બાર અનંત બાર ઘુમા હોગા. જો મનુષ્ય જો રેયરલી મિલતા હૈ મનુષ્ય ભાવ, વો ભી અનંત ભાવ. કેવલ મનુષ્ય અનંત બાર હુઆ એસા નહીં, મનુષ્ય હોકર અનંત બાર દિગંબર જીન દીક્ષા લેકર ફિર ભી મિથ્યા દૃષ્ટિ રહા તો નવે ગ્રહ એક તક જાકે વહાં પર ભી જન્મ લિયા થા, એક દો બાર ને અનંતો બાર. અભી ઉસકે લિયે સબ કન્ડિશન્સ હોગી, ઉનકા ઉત્કૃષ્ટ ઉત્કૃષ્ટ તીન સહનન હોને ચાહિયે વગેરે વગેરે. સચ્ચા ઉનકો દ્રવ્યલિંગ હોના ચાહિયે, શુક્લ લેશા મેં વહાં કે આયુ બાંધની ચાહિયે, નહીં તો દિગંબર દ્રવ્યલિંગી હુઆ ઇસલિયે સબ ગ્રહ એક મેં તો નહીં જાયેંગે. ખ્યાલ મેં આતી ને બાત, એને એસી રેર કન્ડિશન હોને પર ભી એસે અનંતો બાર ક્યા. એને કિતના હમ ઘૂમ ચુકે હૈ યે જીવ કો અભી યાદ નહીં, ઇસલિયે બસ હમ મનુષ્ય હૈ અરે યે હમારી લાઈફ હૈ, બસ ઇસકો હમકો એન્જોય કરના હૈ. ઉસકો યે પતા નહીં ચલતા કે કિતને રેરલી, ઓર યે મનુષ્ય મેં આને પર ભી શાસ્ત્રાભ્યાસ કા અવસર કિતનો કો મિલેગા. યે સુનને તક કી બાતે નહીં મિલતી હૈ, ક્યુંકિ જહાં જાઓ વો ક્રિયા મેં હી ઉલઝા દેતે હૈ, ભલે વો શ્વેતાંબર હો યા દિગંબર હો. યહી સભી કી માન્યતા હૈ, બસ યે ભક્તિ કરો, યાત્રા કરો, કુછ ઉપવાસ કરો, બસ દયા દાન દે દો, હો ગયા. તો યે કર લિયા તો હમ સમાધાની માનતે, હમ યે કર રહે હૈ, ફિર બાકી લૌકિક આપ કમાઈ કરો, ઇધર ઘૂમો, વો એન્જોય કરો, યે ભી કરો, વો ભી કરો, હમારા હો ગયા, જીવન સફલ હો ગયા, એસા માનતે હૈ. આપકા પ્રશ્ન હૈ, સ્વરૂપ કે સન્મુખ કૈસે હોતા હૈ, કાયોત્સર્ગ કરને સે હોતા હૈ, કૈસે હો સકતા હૈ? સ્વરૂપ કા નિર્ણય કરને સે. પહેલે મેં કહું સ્વરૂપ ક્યા હૈ માલુમ નહીં હૈ, તો વો કૈસા હૈ, પર્યાય યાને ક્યા, ઉસકો સન્મુખ કરના યાને ક્યા, ઉસકી મહત્તા હી નહીં આયા તો ઉસકે સન્મુખ કૈસે હોગા? તો સ્વરૂપ હૈ ક્યા? હમને તો અપને કો મનુષ્ય માન કર બૈઠા હૈ, શરીર માન કર બૈઠા હૈ, હમે આત્મા કા અનુભવ કરના હૈ તો અંદર ચલે જાઓ. તો કાયોત્સર્ગ તો શરીર કી કુછ ક્રિયા કો કાયોત્સર્ગ માન લિયા હૈ હમને. કાયોત્સર્ગ કહેંગે ઉસકે? કાયોત્સર્ગ કા અર્થ ક્યા હોતા હૈ પહેલે બોલો. હા કુછ પાઠ બોલતે હૈ, હા યાર કુછ સ્થિર હો જાતે હૈ, પરંતુ યહાં તો શરીર કા ક્યા, રાગ આદિ કા ભી લક્ષ્ય છોડના હૈ. જીસકો પરદ્રવ્ય ક્યો કહે રહે, યે કાયોત્સર્ગ તો કહે રહે, જો રાગ હૈ યે પર્યાય હૈ, પર્યાયો કા ભી લક્ષ્ય છોડના, કાયા કા કાય કા ઉત્સર્ગ કરના યાને ક્યા, કાય કે પ્રતિ કા લક્ષ્ય છોડ દેના, ક્યુંકિ મેં તો આત્મા હું, કાય સે બિલકુલ જુદા હું, પરંતુ હમ કાયો કાયા કે એને શરીર કી સ્થિર અવસ્થા કરના હૈ, એસે ખડે રહેના, ઇસ તરહ સે ગયા નમોકાર મંત્ર કહેના, કાયોત્સર્ગ હો ગયા. યે તો ઉસમે એક રૂટીન ઉન્હોને એક પાઠ બના દિયા કે યે અબ કહો એસા સ્થિર હોકર તો કાયોત્સર્ગ હો ગયા. પરંતુ આત્મા ક્યા હૈ, સ્વરૂપ ક્યા હૈ, ત્રિકાલી ક્યા હૈ માલુમ નહીં હૈ, તો ઉસકો વો ઉસકા અનુભવ નહીં હોગા, ઉસકે સન્મુખ નહીં હોગા, બસ ઉસને વો કુછ શુભ ભાવ કિયા, બસ ઇતના હી.
પહેલે મેં પહેલે યે નક્કી કરે કે ક્યા મેં શરીર કો ઠીક ઠાક કર સકતા હું, શરીર કે રીઢ કી હડ્ડી ઠીક કરે, સીધે ખડે હો જાય, નિશ્ચલ હો જાય, ક્યા હમ શરીર કો બદલા સકતે હૈં, યે પહેલા હમે નક્કી કરના હૈ. દો દ્રવ્ય ભિન્ન હૈ ના, એક દ્રવ્ય દૂસરે દ્રવ્ય કા કુછ નહીં કરતા, યે અભી ઇતના હી આપ ક્યું નહીં કરતા, વો બાદ મેં આયેગા, ઇતના તો નક્કી કરો. તો હમને એસા માના કે મેં શરીર કો એકદમ સીધા રખતા હું ઓર બસ જો કુછ પાઠ બોલના હૈ બોલતા હું, લેકિન બોલને કા કાર્ય ભી આત્મા નહીં કરતે. કોઈ વાત નહીં, આપ પૂછના, મન મેં કોઈ પ્રશ્ન હો ભી જરૂર પૂછના, સબકા ઉત્તર મિલેગા આપકો.
આપ કહેંગે કાયોત્સર્ગ મેં નમો અરિહંતાનમ કહેંગે, પણ નમો અરિહંતાનમ અરિહંત કા સ્વરૂપ નક્કી ક્યા હૈ, જો સહી હોના ચાહીએ, 18 દોષ સે રહિત, જો મુનિરાજ નિર્ગ્રંથ હોતે હૈ, तो अरिहंत निर्ग्रंथ हो गए कि नहीं, दिगंबर हो गए क्या, मुकुट सहित हो गए क्या, कपड़े सहित हो गए, बोलो, समझ में आती है बात? वो कोई कहते ऐसे कि नहीं, वो राजा की अवस्था है, पर राजा की अवस्था हमें तो पूर्ण वितराग चाहिए। राजा की अवस्था पूर्ण वितराग नहीं हो सकती, गृहस्थ में रहते हुए चौथा गुणस्थान, मैक्सिमम पांचवा गुणस्थान किसी को होगा, कि जिनकी पूजा भी नहीं की जाती, पूजा अर्घ्य उतारने योग्य नहीं होते हैं। तो ये अरिहंत का स्वरूप नहीं मालूम है, तो अरिहंत के नाम से कायोत्सर्ग भी कैसे होगा? यानी सब गड़बड़ी मूल से ही शुरू होते, मूल से देव का स्वरूप नक्की करना है, गुरु यानी मुनिराज का स्वरूप नक्की करना है, शास्त्र क्या सही कहते उसका स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप यानी सात तत्व कहो, छह द्रव्य कहो, उनका स्वरूप निश्चित करना है, ये तो बेसिक है। फिर वो किस तरह से भेद विज्ञान करना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, स्वरूप के सन्मुख होने के लिए राग से, अभी यहाँ पुण्य में, पुण्य के करने में इतना रचा पचा है, अब ये कायोत्सर्ग भी एक पुण्य की क्रिया के रूप में हमने मान लिया है, और हमने प्रतिक्रमण किया, हमने प्रत्याख्यान लिया, हमने ये किया, तो ये हमने कर लिया, शरीर की क्रिया की, हमने पाठ बोला और ये हमारा हुआ और इसी से हमारा शुरू होगा ऐसा लगता है। परंतु उसमें बहुत, देखो ये मुनिराज भी कायसर्ग वगैरह उनके भी होते हैं, परंतु उनका वो सच्चा होगा, क्योंकि जहाँ वो अंतरंग में स्थिरता है और उसका सन्मुखता है, तो बाह्य में शरीर की भी वैसी उनके क्रियाएं भी होगी, परंतु वो मैं करता हूँ ऐसा करने हुए तो वो क्रिया को नहीं मानते, क्योंकि क्रिया तो वैसी दिखती है जैसे अज्ञानी कर रहे हैं वैसे उनकी क्रियाएं दिखती है, बाकी सभी वैसा ही दिखता है, वो भी निश्चल बैठे हैं ऐसे, और हम भी ऐसा करके बैठ जाए तो क्या दिखेगा? ख्याल में आती है बात? कुछ नहीं सूझता है तो हम नमोकार मंत्र कहेंगे या जो कुछ हमने शास्त्र में पढ़ा है उसी को दोहराएंगे वहीं मन में, और क्या करेंगे? तो वो किस तरह से उसके सम्मुख होना, इसके लिए यहाँ बता रहे मुनिराज, स्वयं बता रहे करने लायक, सबसे पहले करने लायक ये बात है। हाँ देखो यहाँ कहा ना, ये मार्ग ने समझाया बिना 84 लाख योनि एक एक मानंतवार क्रिया, केवा मुनि कोड़भाड़ा वादिराज मुनि भगवान ने स्तुति करता करता विषापहार, विषपहार नहीं विषापहार, विषापहार स्तुति करे छे, करी छे। ये विषापहार एक स्तोत्र है, जैसे भक्तामर स्तोत्र है वैसे एक विषापहार स्तोत्र है। मुनिराज ने तो भगवान की स्तुति की है, विषापहार स्तुति छे ने, एमा एक शब्द लीधो, प्रभु हूँ भूतकाळना दुख याद करू छूं तो आयुधनो घा वागता हो एवू लागे छे। क्या कहते हैं? भूतकाल के दुख कौन से, नरक में जाके आए होगे कि नहीं? ये तीरियंचों के देखे होगे, हम देखते तीरियंचों आसपास देखते या कभी ये चैनल्स लगाते तो लगते हैं कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राणी एक दूसरे को मार कर खा रहे हैं। तो ऐसे योनियों में हमने दिन काटे होंगे कि नहीं, कितने भोग करके आए होंगे, और नरक की तो बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं यहाँ पर आगम में, तो वहाँ के ये सब हम दुख भोग के आए हैं, एक बार नहीं अनंतों बार। इसलिए कहते हैं ऐसा कभी कभी आता है तो ये जो संलेखना लेते ना तभी भी पहले वो नरक की बात याद दिलाते, ऐसा ऐसा दुख भूल, तो वो तो अभी है ना, अभी संलेखना ले रहे तो मुनिराज है वो तो नरक में जाने वाले नहीं है, तो उनको क्यों नरक की याद दिलाते? तो यहाँ कहते देखो, भूतकाल ना दुख याद करू छू तो आयुधनो घा वागता हो एवं लागे छे, मुनि कहे छे। आहा हूँ भूतकाल ना दुख ने याद करू छू ए निगोदना नरकना दुख, हा हा जेम आयुध शस्त्र नो घा वागे एम घाव आगे छे, अरे ए दुख केम बैठ्या, यानी अभी वो दोबारा यानी ऐसे ऐसे दुख भोग के हम अभी आए हैं, हम मनुष्य है तो हमें तो अभी त्रिकाली आत्मा का ही लक्ष्य करना है, तो वो लक्ष्य तो हम तो अनादि अनंत है, उसमें मैं स्थापित करेंगे तभी इन सारे दुखों से छुटकारा होगा, इसलिए याद करते हैं, नहीं तो वर्तमान जिस पर्याय में जाता है वहाँ एडजस्ट होकर सुख मानने लगता है, ये जीव की साधारण टेंडेंसी है। आप देखो उसके लिए कोई जो बहुत श्रीमंत है अपने को सुखी मानता है ऐसे नहीं, गरीब झुपड़े वाला भी वो उसके अपना घर अपना ये सब उसमें वो तो हम अच्छा है, उसी को अच्छा मानते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहता वो। जेना अंतर्मूर्तना दुख नारकी ना करोड़ों भवे अने करोड़ों जीभे न कही सके। क्या कहते हैं, अंतर्मूर्त में इतना दुख है कि नारकी के तो सागरों की आयु है, तो वहां उनके करोड़ों भव में और करोड़ों जीभों से भी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। क्या रे, देखो ऐसा है, जेना अंतर्मूर्त ना दुख नारकी ना चाहिए, नारकी ना करोड़ों भव नहीं, हम करोड़ों भव और करोड़ों जीभे नहीं कह सकते। नारकिना के बाद कॉमा लगा लो। जेना अंतर्मूर्तना दुख, जेना यानी नारकिना, करोड़ों भवे ने करोड़ों जीभे न कही सके, यानी कोई भी भव ले लो, अकेले नारकी का ही, नारकी के ही भव में उसका वर्णन करना चाहिए ऐसी नहीं बात, हम करोड़ों भव में उसका वर्णन नहीं कर सकते ऐसा लेना। त्यारे प्रभु ना गुण अनंत मुख अने एक एक मुख में अनंत जीवती पन कही सके नहीं। क्या कहते हैं, वहां अंतर्मूर्त के दुख कोई नहीं कह सकते करोड़ों भवन से, यहाँ तो कहते हैं प्रभु के गुण इतने अनंत है कि अनंत मुख से नहीं कह सकते, और एक एक मुख में जीव भी अनंत लिए अनंत मुक्ति अने एक एक मुख में अनंत जीवती पन कही सके नहीं, एटला गुणनी संख्या छे। मारे तो अहीं बीजू कहेवू छे, एनो एक अंश सम्य दर्शन में प्रकट थयो। यहाँ तो वो भूलते नहीं है, जीवादि बहिर्तत्व में वापस वहां तक आते, पहले तो महिमा कहते हैं, इतने अनंत गुण है, इतना अंश प्रकट हुआ है, फिर भी कहते वो बहिर्तत्व है ना। ए बधा गुणनो अंश प्रकट थयो छे, छता छता ने शू कहे छे, एम हुआ छता पण एने परद्रव्य कहूं। हिंदी में क्या कहते ऐसा पूछा होगा उन्होंने, यानी ऐसा होने पर भी, यानी इतने पहले में कितने अनंत 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 उसकी महिमा गए कि अनंत मुख और अनंत जीव उसके भी कह नहीं सकते, इतने अनंत और सभी अनंत गुणों का एक एक व्यक्त अंश प्रकट हुआ है, फिर भी एने परद्रव्य पर केम के पर्याय उत्पन्न थई द्रव्य माथी, बात है ना। और ये स्वभाव रूप पर्याय तो द्रव्य के लक्ष्य से द्रव्य में से उत्पन्न हुई है, शुद्धि नी नवी पर्याय पर्याय माथी उत्पन्न थती नथी, संवर छे शुद्धि छे, निर्जराए शुद्धि नी वृद्धि छे, मोक्ष शुद्धि नी पूर्णता छे। तो कहे छे के जे शुद्ध पर्याय प्रकट थई एना आश्रय थी शुद्धि उत्पन्न नथी थती, शुद्धि नी वृद्धि उत्पन्न थाय तो त्रिकाण द्रव्यना आश्रय उत्पन्न थाय छे। अब कहीं ना शुद्धि तो उत्पन्न हुई, अभी शुद्धि उत्पन्न हुए तो अभी उसको बढ़ने दो, तो कहते वो बढ़ने वाली यानी शुद्धि की वृद्धि भी वो त्रिकाली के आश्रय से शुद्धि उत्पन्न हुई है, और उसी के आश्रय से उसकी वृद्धि भी होगी, उसी के आश्रय से मोक्ष होगा, सब कुछ वो त्रिकाली के आश्रय से होगा, पर्याय के आश्रय से नहीं। ए कारण थी जेम परद्रव्य माथी पोतानी पर्याय उत्पन्न नथी थती, एम पोतानी निर्मल पर्याय माथी पण नवी शुद्ध निर्मल पर्याय नथी आवती। कितनी बार वो देखो वो थकते नहीं एक ही बात, और वो अलग अलग शब्दों में वही घोल घोलन करके हमको जैसे गुटी पिलाते हैं ना। ए कारणे अमे एने परद्रव्य कहिए छे, समझाणू कहे हा हा अलौकिक बात छे। आ मुनि कहे छे मने मारो आत्मा उपादे छे एम कहीने जगत ने संभावे छे, क्योंकि उन्होंने साक्षात अनुभव लिया है, उन्होंने उपादेय किया है, वो साक्षात बता रहे। समझाणू कहीं मारो आत्मा ज मने उपादे छे, हूँ केवो छूं के सहज वैराग्य रूपी महल मोटो महल एनु शिखर एनो शिखामणि टोच उपरनु रत्न चूड़ामणि कलगीनो रत्न ए शिखामणि हूँ एवो वैराग्य स्वरूपी छू एम कहे छे। अभी वैराग्य कहा तो वहाँ अस्थि भी है, यानी वो ज्ञान में अपने में लीन है, वहाँ लीनता भी है, अपने को जानते भी है, और पुण्य पाप के परिणामों से तो विरक्त है। परद्रव्य थी जे परांगमुख छे, आहा हा अभी परद्रव्य कहने से अभी ये सब जीवादि बहिर्तत्व सब परद्रव्य कह दिया, उससे वो परांगमुख है। ए पर्याय आदि परद्रव्य छे एनाथी हूँ परांग मुक्षु। देखो साक्षात स्वयं को बता रहे कि ऐसी बातें नहीं है कि जो कुछ हवा में कर रहे हैं, साक्षात अपने अनुभव से अपनी स्वयं की पोजीशन बता रहे कैसी है। आ रीते पोतानु दृष्टांत आपीने श्रोता ने सत्य वातनी जाहिरात करे छे। नहीं तो ऐसा लोगों को ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा कोई नहीं होता है, अरे ये मैं साक्षात हूँ ना ऐसा कह रहे। वो अमृतचंद्राचार्य भी कितनी बार कहते हैं हाँ कि ये इतना हो जाएगा नहीं तो ये हम खड़े हैं यहाँ, यानी वो सम्य दर्शन होता है कि नहीं होता है वो असंभव बात है ऐसे लोग कहते, तो क्या कहें ये हम साक्षात खड़े हैं। एक ज्ञानी कुछ अपने डंका पीटने के लिए नहीं कहते, सामने वाले जीवों को उससे और दृढ़ता आती है, अरे ये कर सकते हम क्यों नहीं कर सकते। एकली बात नथी यह लिखा ना, दृष्टांत आपीने सत्यवात नहीं जाहिरात करे छे, एकली बात नथी, खाली ऐसे जिसको कहें ना मराठी में पोकड़, हाँ हाँ खाली खोखली बातें नहीं है, ए वात में आटलू जानवानू छे, वस्तु तत्व जानवानू छे, एम कहे छे, कहे छे परद्रव्य थी जे परांगमुख छे, पांच इंद्रियोना फैलाव रहित देह मात्र मुनि छे ने मुनि, तो पांच इंद्रियों लक्ष्यपन छूटी गयू छे, इंद्रियों के विषयों में उनको कोई रस नहीं है, अनिंद्रिय अनइंद्रिय इंद्रियों से रहित भगवान आत्मानो आश्रय थई गयो छे। हा हा समझानु काय, पांच इंद्रियोना फैलाव रहित देह मात्र जेने परिग्रह छे, मुनि ने तो एक देह मात्र रहे छे, वस्त्र पात्र तो छे ज नहीं, आहा हा श्वेतांबर मां तो घणु लीधु छे, वस्त्र पात्र दस दस रजोणा दस दस गुच्छा, क्या होता है हमको हम कभी हमने शब्द भी सुने नहीं, भिक्षा माटे जाए अने मळे तो लई लेवू, भिक्षा उसको भिक्षा ही कहते हैं, गच्छा गुच्छा मालूम नहीं क्या, अभी कुछ अलग अलग टाइप के हो गए उसमें पता नहीं क्या, वो लकड़ी को आगे लगाते वो वो सब हो उसके अलग अलग उसमें उसमें इंक्लूड करते होंगे। अभी हमको कभी हमने सुने नहीं कोई भी बातें, आपको उसमें हो सकते तो उसमें वो उसी के अंदर इंक्लूड होते थे। पन तो अलग अलग टाइप में होते होंगे ना उसमें कोई, हाँ गुच्छा ने उसको क्या कहते हैं, अरे उसे कोई टाइप उन्होंने बताया ना अलग अलग टाइप के जो होते हैं, हाँ दहा नहीं उसमें प्रकार होते होंगे कुछ, एक पोतानी माटे राखो ने नव आचार्य ने आपो अने पात्र ने आटलू रंगवू, वो सब वो तो पहले करते थे ना पात्र ने रंग, वो स्वयं कहते थे ना हम के इसके लिए हमने दीक्षा ली गया, ऐसा कुछ उनके विचार थे तभी जो उस स्थानकवासी में थे तभी की बात चलती है। ये सवत 1973 की बात छे, 1973 साल में अमारा गुरु पात्रा रंगता हता, तो बे बे त्रण त्रण कलाक रंगवा माटे जोईए, ओहो ए पात्रा रंगता हता, अमे स्वाध्याय करता हता। गुरु उनके करते होंगे उनके 1973 की बात छे, संवत 1973 मारो ध्यान ए बाजू नहोतु, मैं कीधु महाराज आ पात्रा बे बे कलाक रोज रंगवा ए शू छे, गुरु एम कह्यू भद्रिक हता तो पात्रा विनाना साधु गोती लावजे, समझानो काय, तभी क्या कहा था उन पात्रा बिना के साधु तो उनको दिगंबर मिल गए। नहीं उसमें होगा कुछ ऐसा, जब करते होगे तब ज्यादा टाइम जाता होगा ना उसमें, पात्रा हो ना, ब्लैक ब्लैक लाइन होती है क्या उसमें? हाँ, साधु राखे जे पात्रा ने रंगे एमा भोजन ले, ए रंगता हता ने मैं कहे कि महाराज आ शू करो छो, तेदी मारी दीक्षा ने 4 वर्ष थया था, 1973 नी वात छे, आ उपाधि शू? त्यारे मारा गुरु एम कहूं कि पात्रा विनाना साधु गोती लाओ, पात्रा वगरना साधु होय ए शोधी लीधा। आहा हा, આ 1973 સાલની વાત છે, કેટલા વર્ષ થયા? 62 વર્ષ થયા, 60 અને 2 અમારા પંડિતજીનો તો જન્મ પણ નહોતો, એ કહે પાત્રા વગરનો સાધુ હોય શોધી લાવજે, આ શોધી લીધા કુંદકુંદાચાર્ય, પાત્રા વગરના મુનિ છે, પાત્રા રાખે એ મુનિ નહીં, અને એકલા પાત્રા રાખે અને વસ્ત્ર છોડી દે તો પણ મુનિ નથી। અંદરમાં દયાદાન મહાવ્રતના પરિણામને પોતાના માને છે, આદરણીય માને છે, એ તો મિથ્યા દૃષ્ટિ છે। અહીંયા તો કહે છે સંવર નિજરાને પણ આદરણીય માનવા નહીં, પ્રકટ થયા છે, હું તો એનાથી વિરુદ્ધ ને દૂસરી ઉસકા અલગ ઉસકે વિમુખ હોકર, હા, સ્વદ્રવ્યમાં તીક્ષ્ણ બુદ્ધિથી પડ્યો છું, અને ઉસકા લક્ષ્ય છોડકર મેને અપના લક્ષ્ય કર દિયા હૈ। પરદ્રવ્યથી જે પરાંગમુખ, એમ લખ્યું છે ને, પરદ્રવ્યથી જે પરાંગમુખ, 5 ઇન્દ્રિયોના ફેલાવ રહિત દેહ માત્ર પરિગ્રહ છે, મુનિને તો દેહ માત્ર પરિગ્રહ છે, એક શરીર છોડ્યું છૂટે નહીં। આહા હા, જે પરમ જિનયોગીશ્વર, પરમ જિનયોગીશ્વર છે, હું તો પરમ જિન યોગીશ્વર છું। પરમ જિન યોગીશ્વર એનો અર્થ કે સમ્ય દર્શનમાં યોગ એટલે પોતાની પર્યાયના પર્યાયને આત્મામાં જોડવી, એ તો છે પણ જગન્યપણું છે, પોતાની નિર્મળ પર્યાયને દ્રવ્ય સાથે જોડવી, લીન થવું, એ યોગ છે, એ યોગ છે। આ તો કહે છે કે અમે તો પરમ જિન યોગી, પરમ એની ઉત્કૃષ્ટ, અને ઉત્કૃષ્ટપણે અમને અપને સ્વયં કે સ્વભાવ ભાવ મેં જોડ લિયા અપને કો, યા લિખા ને પોતાની પર્યાયને આત્મામાં જોડવી, યોગ કિસકો કહા? યે સમય દર્શન કો યા જો યોગી હૈ એસા કહેતે હૈ, અપને પર્યાય કો અપને આત્મા મેં જોડ દેના, વો યોગ હૈ। જગન્ય કહેંગે સમય દર્શન મેં ઉસને જોડ તો લિયા હૈ, પરંતુ વો તો જગન્ય હૈ, और मुनि का कितना जोड़ना होगा स्थिरता, ये तो बिल्कुल जघन्य स्थिरता है, और उनकी कितनी है, जम गए है ना अंदर, स्थिरता की बात है, लीन थवु बताए ना, तो अधिक जिसको गहराई से लीन हो गए, दृढ़ता है भी है और गहराई भी ज्यादा है। आ तो कहे चुके हमें तो परम जिन योगीश्वर, परम जिन अने योगीश्वर, અમારા આનંદમાં અમે અમારી પર્યાયને ઘણી જોડી દીધી છે। ત્રિકાળીમાં જે સંવર નિજરાને પરદ્રવ્ય કહેવામાં આવે છે, મોક્ષું કહેતે મહિમા નથી આવતી? ઉત્તર છે તો ખરી, વસ્તુ છે, જ્ઞાનમાં તો બરાબર જાણવું જોઈએ, આદરણીય નથી। એ જો સંવર નિજરા કી જો પર્યાય હૈ વો જ્ઞાન મેં તો જાના જાયેગા કે કિતની સ્થિરતા હો રહી, કિતને હમ આગે બઢે હૈ, ये तो ज्ञान का विषय तो है ही है, परंतु आदरणीय नहीं, हाँ, आश्रय करने योग्य नहीं, और मान्यता में उसको छोड़ने लायक है, क्योंकि इसको छोड़कर अंदर में स्थिर होने लायक है, पर कहाँ तक पहुंचे तो ज्ञान का ये तो होगा ही होगा, नहीं तो कैसे सहेंगे कि पहले से हम अभी स्थिर हो गए हैं? उनको तो ख्याल तो होनी चाहिए ना कि हम पहले से हम आगे बढ़े, ये तो ख्याल में आता होगा कि नहीं होता होगा? यहाँ लिखा ना ज्ञान में तो छे, જ્ઞાનમાં તો છે, એમ ન જાણે તો વસ્તુ દૃષ્ટિ નથી। જ્ઞાન મેં તો જાનને મેં તો આ રહી હૈ, વો સંવર નિજરા કી પર્યાય હો રહી હૈ, ક્યુંકી અતિન્દ્રિય આનંદ કા અનુભવ તો હો રહા હૈ। જ્ઞાન મેં તો જાનને મેં આ રહા હૈ કી મેરે મેં એસી શુદ્ધિ ઉત્પન્ન હુઈ હૈ, પરંતુ અગર ઉસકો ભી નહીં જાનેંગે તો ઉનકી વસ્તુ કી દૃષ્ટિ નહીં હુઈ હૈ, ક્યુંકી જ્ઞાન હો રહે નહીં, ક્યુંકી પર્યાય તો જાન રહી ના કી કહાં તક પહોંચે હૈ, જૈસે ચૌથે મેં થે, કોઈ ફિર પાંચવે ગુણસ્થાન કી યોગ્ય સ્થિરતા હો ગઈ, कोई किसी के आगे बढ़कर उन्होंने मुनि दीक्षा भी ली और स्थिरता भी बढ़ गई, तो उतना जानेंगे कि नहीं कि अपने पर्याय में क्या चल रहा है। इसको कहते हैं ज्ञान तो है उसका, परंतु मानने में क्या है, आदरणीय कौन है, मैं स्वयं त्रिकाली। अहीं कहे छे परम जिन योगीश्वर छे स्वद्रव्य में जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे। देखो उपयोग पूरा अंदर ही तीक्ष्णता से लगाया। समकिति अने मुनि केवा होय छे, आहा स्वद्रव्य में आ मुनि नी वात छे ने, माटे जेनी तीक्ष्ण बुद्धि छे, सम्यक दृष्टिनी स्वद्रव्य में बुद्धि छे पण मुनि जेटली तीक्ष्ण बुद्धि नथी। ख्याल में आई बात? इसलिए जगन ने भी कहा ना अंदर आनंदना नाथमां तीक्ष्ण बुद्धि छे, अतीन्द्रिय आनंदनो स्वाद आव्यो छे एमां रमणता करे छे, ए अतीन्द्रिय आनंदमां रमण करे छे ए चारित्र छे। उसको चारित्र कहना, चारित्र बाह्य में कुछ आचार विचार किए वो चारित्र उसको नहीं कहते। चारित्र कोई नग्नपणु पंचमहाव्रत परिणाम ए चारित्र फारित्र नथी। शेठ ए दिगंबरना शेठ छे, आ दिगंबर, आहा हा। यही रुकते है, ये बड़ा पैराग्राफ है ना। जवानी के ज्ञान से सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।